یہ مبارک ایام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان ایام کی ہمیں قدردانی کی توفیق دیں، جیسا ان ایام کا حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا حق ہوگا ان ساعتوں کا، ان گھڑیوں کا، اس لیے کہ ایسے وقت میں یہ ہمارے لیے کام آنے والی ساعت ہیں اور گھڑیاں ہیں کہ اسے ہم اس دنیا میں، ایک محدود دنیا کے دائرے میں، مادیت میں رہ کر سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کس وقت ہمیں کام دیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت رجلا یلہث عطشا، کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو پیاس کے مارے ہانپ رہا ہے، کتے کی طرح سے زبان باہر نکلی ہوئی ہو، اتنا زیادہ پیاسا، اس طرح وہ ہانپ رہا ہے، یلہث عطشا، پیاس کے مارے۔ اب اسے پانی کی تلاش ہے، کلما دنا من حوض منع وطرد، کہ جب کسی حوض تک پہنچ جاتا ہے پانی پینے کے لیے، وہاں معاشر میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حوض ہوں گے، سب سے بڑا حوض کوثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جس کسی حوض کے قریب جاتا ہے تو اسے دھکے دے دیے جاتے ہیں۔ فجاءہ صیام شہر رمضان فاسقا واروا، فرمایا کہ اتنے میں اسے دیکھ لیا کسی نے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کس نے؟ صیام شہر رمضان، رمضان کے روزے آ گئے، وہاں پہنچ گئے اور اسے پلایا پلایا پلایا، اتنا پلایا کہ فاسقا و اروا، اس نے کہا بس میں اچھی طرح سیر ہو گیا۔ تب یہ کس گھڑی میں، یہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ 18-19 گھنٹے کا روزہ کیسے ہوگا، مگر کچھ پتہ بھی نہیں چلا، بلکہ ایک نعمت اور مل گئی کہ جو عام سال بھر میں جتنی رغبت سے، مزے سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہوگا، وہ ان دنوں میں کھایا جاتا ہے پورے سال میں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، ورنہ ہزاروں نعمتیں دسترخوان پر ہوں اور انسان کی خواہش نہ ہو تو کس کام کی۔ کاش کہ ہمیں حق تعالی شانہ ان گھڑیوں کی قدر کی توفیق دے اور ہمیں ان وعدوں پر یقین دے۔ یہ تمام چیزیں حق ہیں، یہ جتنے ہم بزرگوں کے واقعات میں سنتے ہیں کوئی گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، ورنہ ہمیں کیا کہ روزوں میں، ایسی راتوں میں آپ کے پاس بیٹھ کر ان کتابوں سے ان کے حالات پڑھتے اور آپ کے سامنے اسے نقل کرتے، کیا رشتہ داری ہے ہماری کہ ان کا نام ہم اونچا کریں، ان کے فضائل بیان کر کے، ان کے مجاہدات جھوٹے بیان کر کے، جبکہ ہر چیز میں ہمیں تجسس اور کوشش ہوتی ہے کہ بھئی بالکل ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ میں نے کل ہی آپ کو حوالہ سنایا تھا کہ میں نے پہلے دن عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 200 سال تک روتے رہے، پھر میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں مسعودی کی روایت لائے ہیں کہ 300 سال تک روتے رہے۔ تو یہ جن کی کتاب ہے مدارج النبوہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے پائے کے محدثین میں، جنہوں نے ہندوستان میں، دہلی کے علاقے میں سب سے پہلے علم حدیث کو پھیلایا، تو ان کی ایک کتاب ہے مشکات کی شرح لمعات، उसकी शुरू ये ख़ुद मिश्कात की शरह है और उस पर बहुत से हज़रात ने तहकीक की और उसको अपने अपने तरीक़ से छपवाया। तो हमारे बुज़ुर्गों में से हज़रत शेख क़ुद्दुस रूह के खुद्दाम में से हज़रत मौलाना शेख तकीउद्दीन नदवी इस किताब को दोबारा अपनी तहकीक से शाये कर रहे हैं। इनसे कोई 45 साल से ज़्यादा पुराना हमारा ताल्लुक। तो इन्होंने परसों मुझे फ़ोन पर कहा, मैंने पूछा कि हिंदुस्तान का आपका सफ़र कैसे रहा, कहाँ गए? तो उन्होंने बताया दिल्ली के मुतालिक कि दिल्ली में मैं हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मेहदियाँ गया, हज़रत क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गया, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। तो उनका बयान है और उन्होंने बहुत हमारा ख़ुसूसी ताल्लुक बहुत, तो मैंने अर्ज़ किया कि 45 बरस से भी ज़्यादा अभी वो टेलीफोन से ताल्लुक़ रहता है, कभी जब फ़ोन नहीं थे तो डाक से खतूत से रहता था, इससे पहले जब तरकेसर में वो शेख उल हदीस थे उस वक्त वो हमारे यहाँ आते थे, हम उनके यहाँ हाज़िरी देते थे, हज़रत शेख क़ुद्दुस रूह के यहाँ हमेशा साथ रहे। तो इनके बारे में इन्होंने अपने मुतालिक कभी न कोई ऐसा ख्वाब सुनाया कि जिसमें कोई बुज़ुर्गी टपकती हो या कश्फ का दावा किया हो। परसों पहली मर्तबा सारी उम्र में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंचा तो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा अजीब व गरीब मंज़र देखा, अनवारात ही अनवारात। कहते हैं कि मैं तो खुद ही हैरत में रह गया। और क्यों? कि उन्होंने खुद ही कहा कि शायद ये जो उनकी किताब की मैं इशात की कोशिश कर रहा हूँ तो उसकी वजह से ये उन्होंने इकराम फरमाया। तो अब ये जो कुछ यहाँ ज़मीन पर रहते हुए काम कर रहे हैं, सदियों पहले अपनी कब्र में जाकर सो गए हज़रत शेख अब्दुल हक, उनको ये भी पता है कि ये जो आ रहे हैं तकीउद्दीन वो मेरी किताब पर आजकल तहकीक कर रहे हैं, तो इनका वहाँ रहते हुए जिस तरह इकराम होता है, बरज़ख़ वाले जिस तरह इकराम फरमाते हैं हम लोगों का, दुनिया वालों का, इस तरह वो इकराम फरमा रहे हैं। काश के हमें हज़रत शेख क़ुद्दुस रूह का तो मामूल था कि हज़रत जब कभी तशरीफ़ ले आते तो उस हज़रत पूछा करते थे, मेरे किसी ने कुछ देखा तो सुनाया भी था कि हज़रत जी मौलाना इनाम उल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुजद्दिद अल-बिसानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर क्या देखा, उन्होंने बताया था। फिर हज़रत के मुतालिक मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत ने क्या देखा, कि इरशाद फरमाया कि मेरे फ़लाँ 3 मकतूब शाये किए जाएँ। तो ये यहाँ वालों का उस आलम से इत्तेसाल भी रहता है। तो ये तमाम वाक़यात और जितनी ख़बरें हैं इस आलम बरज़ख़ के मुतालिक, उसके बाद वाले आलम आखिरत के मुतालिक सब सच्ची हैं। अल्लाह ताला हमें उस पर यकीन नसीब फरमाए। वरना जो कल मैंने अर्ज़ किया तो जिनको वो दूसरी लाइन सूझती होगी गोरीला को बाबा आदम बनाने की, अपना जद्द अमजद बनाने की, तो वो सूझती नहीं होगी बल्कि अल्लाह तबारक व ताला जब उनकी उस अक़ल का वो गलत ऊंधा इस्तेमाल करते हैं तो उसी तरफ नवल्ली ही कमा तवल्ला। कुरान ने कहा कि नवल्ली ही कमा तवल्ला व नुस्ली ही जहन्नम, वही रास्ता उसके लिए आसान फरमा देते हैं। अपनी तहकीक दर तहकीक तो आगे वही रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो वो कोई मजाक उड़ाएगा कि भाई ये नाक एक गज लंबी, और किसी ने अपनी किताब में लिख दिया तो तुमने मान लिया, और उन्होंने कहते सनद सच्ची, सनद भी सच्ची घड़ी जा सकती है। और अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कह दिया कि हमने देखी कि इनकी नाक ऐसी थी, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो कई साल पहले जो सऊदी अरब में अर्रबाल खाली पूरा एक डेज़र्ट है, जितना आबाद सऊदी अरब है उससे बड़ा है वो, तो बिल्कुल खाली कुछ भी नहीं वहाँ, तो वहाँ खुदाई की जा रही थी, तो वहाँ अंदर रेत के अंदर छुपे हुए जंगल के जंगल निकले, उसमें इमारतें निकली, उसमें ढांचे निकले, तो वो जो इंसानी ढांचे वहाँ निकले हैं कौम आद के, तो उसके मुताबिक लिखा है कि उस पूरी लाश पूरा ढांचा निकला। मैं यहाँ जो सहारनपुर से मौलाना मोहम्मद साहब तशरीफ लाते थे, तो एक रमज़ान में मैंने उनसे कहा कि जाने के बाद आप वो जो सरहन शरीफ में 11 या 14 अम्बिया अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं और उनके मुतालिक कोई खुदाई हुई और कुछ तहकीक है तो ज़रा भेजिए। तो उन्होंने भेजा था कि वो जो खुदाई करते हुए उन्होंने देखा कि ढांचा निकला, तो उसमें वो उनके हाथ हमारे हाथ से कई गज लंबे। खुद हमारे यहाँ कई कब्रें हैं गुजरात में 3-4 जगहों पर सूरत के इलाके में, कि जो आम एक कब्र होती है उससे बहुत ज़्यादा लंबी, तो उसकी मुख्तलिफ तावीरात की जाती हैं कि ये शहीद होंगे तो अपने झंडे के साथ दफन किए गए इसलिए एक लंबी कब्र है, या इनके रफ़का साथ दफन किए गए इसलिए लंबी है, किसी ने किया क्या तावीरात की। तो वहाँ जो ढांचे निकले सरहिन में, तो वो वही आदम अलैहिस्सलाम वाले 60 फुट। तो ये जो अरबल खाली में कौम आद के ढांचे निकले, तो उसका फ़ोटो आया बाकायदा कि जो सर है तो वो सर ऐसा कि आप खड़े हो जाएं किसी बड़े पत्थर और टीले के पास और चारों तरफ घूमते रहें, कोई आपको पकड़ने की कोशिश करे तो आप उसको न मिल सकें, इतना ऊंचा वो सर, गोल गोल इतना कद आदम से ऊंचा सिर वो सर। तो ये मैं तो हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम के कद के मुतालिक अर्ज़ कर रहा था कि वो 60 फिट का कद होता था, और वो जब तो रोते रहेंगे 100 साल 200 साल 300 साल, और रोना भी हमारी तरह से नहीं, वो उनका रोना नबी का, जबकि एक उम्मती के मुतालिक अभी करीबी सदियों के एक बुज़ुर्ग उनके हालात में लिखा है कि वो इश्क़ इलाही में हर वक्त रोते रहते, हर वक्त कोई काम ही नहीं था। हज़रत मौलाना फ़कीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत थानवी क़ुद्दुस रूह के आखिरी खलीफा पाकिस्तान में, हमने उनकी कराची में ज़्यारत की खिदमत में हाज़िर हुआ हमारे भाई यूसुफ़ वराचिया के साथ, तो उनको अगर आप वहाँ मक्के शरीफ में हरम शरीफ में देखते तो आप अभी उनको देखेंगे 3-4 घंटे के बाद देखेंगे तो उसी हाल में, कि वो उकड़ू बैठे हुए हैं और उनका सर है अपने घुटनों पर और टिकटिकी बांधे हुए हैं बैतुल्लाह की तरफ और आंखों से आंसू जारी है, रो रहे हैं, मुसलसल रो रहे हैं, और वो कभी कोई समझाने की कोशिश करता और पूछता तो कहते हैं ये जो 120 रहमतें उतरती हैं मैं उसी को देखता रहता हूँ। क्यों वहाँ से नज़र हटाएंगे, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती कि भाई वो ऐसे जा रहा है, वो बच्चा जा रहा है, वो खातून जा रही है, वो बूढ़े बड़े मियाँ जा रहे हैं, हर एक को देखते रहेंगे वहाँ हरम में भी, और वो 120 रहमतें उतर रही हैं उन्हीं को देखते रहते थे। अल्लाह तबारक व ताला ان جیسے حالات ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو ان بزرگ کے متعلق لکھا کہ وہ عشق الہی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں. ان کا نام روتے ہی رہنا, نام ہی ہر وقت کام ہی ہے. تو ایک مرتبہ کسی نے سمجھانے کی کوشش کی, تسلی دینے کے لیے, دلاسہ دینے کے لیے کہ پھر روتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, آپ نے ساری عمر کا پیشہ ہی بنا لیا, یہی مشغلہ ہے. تو فرمانے لگے کہ دیکھو, میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو مجھے جنت دے دے, کہ میں تیری ملاقات کے لیے ساری عمر سے رو رہا ہوں, تو میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو مجھے جنت دے دے تاکہ جنت میں جا کر میں وہاں تیرا دیدار کرتا رہوں. نہیں, کہتے میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے جہنم میں پھینک دے اور جہنم کی کسی نالی میں پھینک دے. اور کیوں؟ وہ فرماتے ہیں وہاں اس لیے پھینک دے کہ وہاں جا کر جس طرح میں دنیا میں تیرے فراق میں رو رہا ہوں, اس میں جو مجھے لطف آتا ہے وہ شاید کم ہو جائے جب تو سامنے آ جائے. تو میں یہی اسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا, مجھے جہنم کی کسی نالی میں پھینک دے تاکہ یہ فراق کا رونا نوحے کے ساتھ میں وہاں روتا رہوں. اللہ تعالیٰ ایسا رونا رونے کی ہمیں بھی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم.